आयत नंबर 220 से सब मिलकर तिलावत करेंगे भी और सुनेंगे। ऑनलाइन वाले साथियों से यही रिक्वेस्ट है और आज हम सब इस सोच के साथ पढ़ेंगे कि माशाल्लाह आप में से अक्सरियत रोजे से होगी, तो रोजे के साथ आज पहला पारा है, देखते हैं क्या फर्क लगता है। अल्लाह ताला आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी इसको आसान करे। एंजॉय किया आपने? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हैं। अब यहाँ से आगे जो कुरान पाक का हिस्सा होगा आयत नंबर 221 से, थोड़ा सी इसकी तमहीद बांध दूँ। सूरत बकरा मदनी दौर के बिल्कुल शुरू की सूरत है और अभी दीन के अहकामात वाज़े हो रहे थे। सहाबा कराम को मक्का में सिर्फ तीन सबक पढ़ाए गए, तौहीद, रिसालत और अकीदा आखिरत। इसके बाद अब अहकामात का वक्त आया तो बहुत सारे सवाल जो कुदरती तौर पे जहनों में उठते थे, उनमें से एक सवाल ये था कि जिस कल्चर में हम रहते हैं वहाँ तो इर्द गिर्द बहुत सारी मुशरिक खवातीन मौजूद हैं, क्या हम उनसे निकाह कर सकते हैं? यही सवाल हो सकता है कि खवातीन के बारे में वली पूछते होंगे आके कि अल्लाह के नबी हमारे घर एक रिश्ता आया है, बस ये है कि लड़का मुशरिक है, बस ये बात है कि लड़का मुसलमान नहीं, तो क्या ख्याल निकाह कर दिया जाए? मैं आपको इस टोन में इसलिए बता रही हूँ कि ये उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा इशू है कि हम अपने बच्चों के रिश्ते कहाँ करें। यहाँ तो बिल्कुल हल्की सी बात करके हम गुजर जाएंगे, लेकिन ये मौजू आगे जाके बहुत डिटेल से आएगा, बहुत जगह पे आएगा। खास तौर पे इसका मौजू अगर आपने सुनना होगा तो सूरह निसा में आएगा, लेकिन यहाँ सवाल का जवाब इतने खूबसूरत तरीके से दिया गया कि उसके बाद कोई जवाब देने की या उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग की गुंजाइश ना रही। या दूसरी बात है कि सहाबा करम के मानने वाले थे, उन्होंने चूं छा नहीं की क्या करें, कल्चर एक है, सेम है, क्या हुआ, सब इंसान है, बल्कि उन्होंने उसको मान लिया। तो इसके बाद से आगे वाला हिस्सा हम देखते जाएंगे कि इसमें फिर निकाह और तलाक और इसी किस्म की बातें छेड़ दी गई, क्योंकि ये मुस्लिम उम्मत का एक बहुत बड़ा फील्ड है। घर की जिंदगी में अगर इत्मीनान और सुकून नहीं होगा तो बाहर उम्मत मुस्लिमा कभी भी उम्मत वसत नहीं बन सकती। तो आइए जरा अब यहाँ से अहकाम नोट करते हैं कि आज के दौर में अगर उम्मत मुस्लिमा उम्मत वसत का किरदार अदा करना चाहती है तो डिवाइन गाइडेंस में से एक गाइडेंस क्या है, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, तो मुशरिक औरतों से हरगिज निकाह न करना जब तक कि वो ईमान न ले आए। एक मोमिन लौंडी मुशरिक शरीफ आदि से बेहतर है अगरचे वो तुम्हें बहुत ही पसंद हो, और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से कभी भी न करना जब तक कि वो ईमान न ले आए। एक मोमिन गुलाम मुशरिक शरीफ से बेहतर है। वलो आजबकुम, अगरचे वो तुम्हें बहुत ही पसंद हो। वजह, अब आपके भी जहनों में बहुत सारे क्वेश्चन थे उस वक्त से कि ऐसा क्यों है और दिस एंड दैट और वजह, तो अल्लाह ताला ने उसकी वजह दी। इस वजह को हाईलाइट कर लीजिए और अपने दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी अकल को ये वजह समझ आ जाए और हम इससे बेहतरीन फायदा उठा सकें। और वो वजह क्या है? अल्लाह अकबर, आज उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा नासूर है कि हम इस वजह को ना जानने या इसकी अहमियत का एहसास होने की वजह से अपनी नस्लों के लिए इतने बड़े बड़े फितने खड़े करते हैं। वजह क्या है? उलाई का यदून इलन्नार, ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? अपने लाइफस्टाइल से, अपने कल्चर से, खुदा से दूर करके, अल्लाह ताला की नाफरमानियां सिखाकर। जाहरी बात है कि उनके लिए तो वो चीजें बुरी नहीं है, फी जमाना उनका कल्चर है, लेकिन जो तरीका जिंदगी किसी कुफर और इस्लाम के जोड़ के साथ बन जाता है, मैं अक्सर उसमें कहती हूँ कि जब कुफर और इस्लाम की जब शादी होती है, अब आप खुद ही समझ जाएं कि दोनों में कोई एक पार्ट दूसरा है, तो उस वक्त दो में से एक चीज जरूर टूटती है या ताल्लुक बिल्ला टूट जाता है। इंसान अपने साथी के जेर असर आ जाता है, और दूसरी चीज फिर ना ये टूटे तो फिर वो अल्लाह से ताल्लुक जरूर टूटता है, और दूसरी चीज है फिर घर टूट जाता है। ये कभी हो नहीं सकता कि आग और पानी को आप इकट्ठा रखें और वो फिर भी आग आग रहे, पानी पानी रहे। आप देखते हैं कि दोनों को मिला देंगे तो एक माइल्ड सा वाटर रह जाएगा। बिल्कुल यही कैफियत है। कुफर का एक अपना कल्चर है, इस्लाम का एक अपना कल्चर है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कह दें कि मैं माइक्रोवेव को और फ्रिज को मिला दूं या एक हीटर और एसी को मिला दूं। सोच का फर्क, तर्ज जिंदगी का फर्क। सबसे पहला इख्तलाफ तो जो उठेगा वो सुबह फजर की नमाज पे उठ जाएगा शादी के बाद, कि बताओ भाई वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, ये नहीं जा रही, उनको गुसल लेना है, इनको गुसल की कोई तलब नहीं है। एक दिन में शायद 24 घंटे में 400 दफा इख्तलाफात उठेंगे। वो एक रास्ते पे चलेगा, वो एक कोई शौहर किस तरह प्यार से उसको कह सकता है कि चलो और नमाज पढ़ने चलें, चलो और जुमा पे जाएं। इसी तरह हो सकता है कि वो लड़की किसी अपनी इबादत खाने में संडे को या सैटरडे को जाना चाहे। आप खुद देख सकते हैं कि ये फर्क कितना बढ़ जाता है। और अगर इससे भी बढ़ के कुफर की हद आग की पूजा तक पहुंच चुकी हो तो फिर या तो आग की पूजा होगी या रब की होगी। इसीलिए फरमाया वल्लाहु यदु इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निही, और अल्लाह तुम्हें अपने इज़्ज़त से जन्नत और मगफरत की तरफ बुलाता है। ये है विजडम। आप देखिए कि माँ बाप भी अपने बच्चों का रिश्ता जब ढूंढते हैं तो उसके लिए कितने प्लस माइनस देखते हैं ना। तो क्या 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाली जात हमारा प्लस माइनस नहीं देखेगी? वयुबयिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और वह अपने अहकाम वाज़े तौर पर लोगों के सामने बयान करता है, तवक्को है कि वो सबक लेंगे और नसीहत कबूल करेंगे। खुद एक तसाबी पूछिए क्या मुझे विजडम समझ आ गई, क्या मैंने सबक ले लिया, क्या मैंने नसीहत कबूल कर ली। वयसलूनका निल महीद कुल हुआ अजन फातजिलुन निसा फिल महीद। पूछते हैं हैज का क्या हुक्म है, कहो वे गंदगी की हालत है, इसमें औरतों से अलग रहो और इनके करीब ना जाओ जब तक कि वो पाक साफ ना हो जाए। एकदम आपको शायद महसूस हुआ होगा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात शुरू हो गई, हालांकि ऐसा नहीं है। मुसलमान जब मदीना में गए तो यहूद के साथ कुछ के पहले से ताल्लुकात थे, तो यहूद ने अपने ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगा रखी थी औरतों और मर्दों के मामले में कि बिल्कुल औरतों को अछूत समझते हुए अलग कर देते थे, उसके हाथ का खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। दूसरी तरफ नजरान के नसारा से अगर रब्ता किया जाता तो वो इतने ज़्यादा डायल्यूटेड थे, वो औरतों से वो मना ताल्लुक भी कर सकते थे जो कि इस्लाम ने मना किया। तो आखिर फिर इस आयत को यहाँ रखना पड़ा कि देखो शादियाँ ब्याह करोगे तो उसमें ये इश्यूज़ भी तो आएंगे, तुम्हारे लिए पाबंदी है शौहर बीवी की पीरियड्स में, अगर काफिर और मुशरिक साथ जुड़ गए तो क्या होगा। यानी यहाँ आपको टैक्स की वजह समझाने के लिए चंद जुमले बोले, लेकिन हकीकत है कि एक औरतों का निजी मामला दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब में क्यों आया, क्योंकि कुरान हमारे मसाइल का हल है। किताब को हिदायत की किताब बनाकर पढ़ना ही तो असल मकसद था। लिहाजा इस बात से आप लोग बहुत बड़ी एक बात समझ सकते हैं कि जब इतना निजी मसला कुरान की रोशनी में हल करना है तो फिर शादी ब्याह तिजारत मईशत माशरत वो कुरान के मुताबिक क्यों नहीं हो सकती। कुछ बुनियादी अहकाम बताए, फैजा तथा हर नफातू हन मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, फिर जब वो पाक हो जाएं तो इनके पास जाओ जिस तरह के अल्लाह ने तुमको आने का हुक्म दिया। यानी फिर भी मर्जी तुम्हारी नहीं है, अल्लाह ने जो जगह बता दी वही है। ये सारे अहकामात अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहें, क्योंकि आप में से जो सिस्टर सिर्फ दौरे कुरान ही में आप आती हैं पूरा साल नहीं आती, तो यहाँ तो इतनी डिटेल्स नहीं हो सकती, लेकिन किताब तहारा की ऑडियोज आपको रिकमेंड करूंगी, जब आपको मौका मिले आप उसको सुन लीजिए या उस बुक को पढ़ लें। इसी तरह ये इशू जब हम सबीलुल जन्ना की क्लास में करते हैं तो बहुत डिटेल से, क्योंकि मसाइल की बात है। यहाँ सिर्फ आप कुरान की आयतों से इक्तफा कीजिए और आप उसकी तफसीर सुन लें, और अगर कुछ और सवाल जवाब हो तो islamqa.com पे जाएं और इस तरह के इस मसाइल को आप समझ सकते हैं। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बाज रहें और पाकीज़गी इख्तियार करें। हाँ बात यह है कि निसाउकुम हर्सुल्लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम्हें इख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ। यानी नोट कीजिएगा जिस तरह जाओ, ये नहीं कहा कि जहाँ से जाओ, मगर अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो और अल्लाह की नाराजगी से बचो। यह है वो जुमला जिस पे बाज़ ख़वातीन नासमझी की वजह से नाराज हो जाती हैं कि हमें अल्लाह ने खेती क्यों कहा। तो चलिए खेती को और किसान को रिलेट करके देख लीजिए। खेती और किसान का ताल्लुक कितना खूबसूरत होता है। किसान को अपनी खेती से बहुत मोहब्बत होती है, जिम्मेदारी का एहसास होता है, सुबह सुबह उठ के जाता है, खेती को पानी देता है, फिर उसमें से जड़ी बूटियों को निकालता है, कीड़े मकोड़ों से उसको बचाता है, फिर एंड पे वो खेती से जब फसल उगती है तो किसान के लिए वो खुशी का जरिया होती है। इसके बरक्स आज वेस्ट ने या आज के दुनिया के कल्चर या मीडिया ने औरत को क्या कहा, औरत और मर्द के ताल्लुक को किस तरह कहा, फूल और खुशबू, भंवरा, तितली, बटरफ्लाइज। अब आप इमेजिन कीजिए चांद कह दिया, फिल्मों में औरतों को चांद कह देते हैं, आप बटरफ्लाई देख लीजिए तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, एक भंवरा है उड़ता उड़ता आएगा, और अगर एक भंवरा है तो वो फूल है तो वो किस तरह से उसका रस चूसेगा, उसके बाद नो लाइबिलिटीज नथिंग। आपको चांद को देखने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई टिकट नहीं लगा हुआ। इसी तरह औरतों ने अपने चांद जैसे चेहरे जब चमकते हुए बाहर छोड़े, मर्दों ने उससे खूब दिल भरा, जब दिल भर गया उसके बाद तू कौन और मैं कौन, ये पूरी सोच है। आप बताइए कि क्या अल्लाह ताला मुझे और आपको शारा आम कर देता, कॉमन ग्राउंड एनीवन कैन कम, या दूसरी तरफ कह दिया जाएगा कि नो सिर्फ वही रिस्ट्रिक्टेड एरिया, सिर्फ वही आएगा जो है। तो आज ये सोच जो वेस्ट मिल गई, वेस्ट का नाम तो सिर्फ सच्ची बात है, आप इससे कोई एग्रेशन नहीं लिए, वेस्ट के लफ्ज को मैं इस तरह बोलती हूँ जो आज का कल्चर है, तो मुझे वैसे कल्चर ही बोलना चाहिए कि आज वर्ल्ड वाइड जो कल्चर दिखाया गया फिल्मों के जरिए नॉवलों के जरिए, वो औरतों को बस तितलियां बना के उड़ा दिया कि इधर उड़ी उधर उड़ी, बाद में अकेली 2-4-6 किस्म के बच्चे लेकर अकेली पाल रही हैं, सिंगल मदर्स हैं। आप देखेंगे आगे जाकर कि इस कल्चर ने आज कितना नुकसान दिया दुनिया को, कि वो लोग जो खुद अपने ये हाथों से ये कानून बनाने वाले, वो अब इस्लाम का कानून पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनके पास सिंगल मदर्स की इतनी कसरत है। इस्लाम मर्द को एक जिम्मेदार मर्द बनाता है, इस्लाम मर्द को ये कहता है कि देखो अगर तुमने इस औरत से कुछ लेना है तो मैं इसकी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेंगी। आप देखिए कि इतना खूबसूरत किस्म का एक ताल्लुक है किसान और खेती और शौहर और बीवी को देखे तो 90% चीजें कॉमन है। अगर आप रिलेट करके देखें तो आपको लगेगा कि वाकई ये अल्लाह का कलाम हो सकता है, ये बंदे का कलाम नहीं है। वालमु अन्नकुम मुलाकुहु वबशिरिल मोमिनीन, खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन इससे मिलना है اے نبی، جو تمہاری ہدایات کو مان لیں ان کو فلاح اور سعادت کی خوشخبریاں سنا دو. یہاں سے اب دیکھیں باضابطہ تو نہیں لیکن اشارتاً طلاق کے احکام شروع ہیں. طلاق ایک سخت قسم کی قسم ہوتی ہے، اسی لیے یہاں قسم سے بات شروع کی گئی. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی، تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو، ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو، ان کی پاس پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. یہ ہے ویمن رائٹس. ایک یورپین لیڈی تھی جو افغانستان بھیجی گئی تھی سی آئی ڈی کے لیے، اور وہاں وہ مسلم ہو گئی. کسی کو اس کا نام یاد ہے؟ میں نے اس کی ویڈیوز بھی دیکھی ہے، شکل سے بھی جانتی ہوں، لیکن نام اس کے میرے ذہن میں نہیں آتا. اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ جب وہ مسلمان ہوئی، کوئی بھی کہہ لیجیے، جب مسلم ہوئی تو جب اس نے قرآن پڑھا تو کہنے لگی کہ یہ قرآن پڑھ کر یہ بالکل نہیں لگتا کہ یہ کسی اللہ کی ذات کا، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ کسی یورپین لائر نے لکھا ہے جو ویمن رائٹس کے لیے بات کر رہا ہے. وہ بات تو ماں باپ بھی شادیوں کے موقع پہ دامادوں اور ان کے گھر والوں کو نہیں بتا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی. 4 مہینے کی مدت ہے. عرب لوگ اپنی عورتوں کو اتنا لٹکا لیتے تھے، طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے، طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے. سال ہر سال عورتیں ڈائیورسڈ ہوتی، نہ ان سے رہتے نہ ساتھ رہتے. اللہ نے کہا خبردار، اب صرف 4 منتھس ہیں. 4 ماہ از دی ایکسٹریم پیریڈ کہ ایک ہسبینڈ اپنی وائف سے الگ رہ سکتا ہے ناراض ہو کے، روٹ کے. اس کے بعد فائن فاؤ فائن اللہ غفور الرحیم، پھر اگر رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت پھر ان کو معاف کر دے گا. مراد یہ کہ پھر اس کو بیوی بنانا پڑے گا. فائن عزم الطلاق فائن اللہ سمیع علیم، پھر انہوں نے اگر طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کو جانتا اور سنتا ہے. یعنی 4 ماہ کے بعد پھر عورت کو اختیار ہے، اگر مرد اس کو طلاق نہیں دیتا تو عورت عدالت سے طلاق لے سکتی ہے. والمطلقات یتربصن بانفسهن، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھے. ولا یحل لہن یکتمن، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ تخلیق فرمایا ہو اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں. عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے. اسلام کا نکاح سے لے کر طلاق تک کا سسٹم اتنا آرگنائزڈ، اتنا سسٹمیٹک ہے اور اتنا لاجیکل ہے کہ آج دنیا بھر کے سارے قوانین آپ دنیا کے لکھ لیجئے کہ شادی کی صورت میں کیا قانون ہے، ڈائیورس کی صورت میں کیا، ایک پلڑے میں ڈال دیں تو آپ اللہ کے اس قانون کو دیکھیں گے تو یہ سب کے اوپر جیت جائے گا. اتنے خوبصورت طریقے سے عورت اور مرد کو حقوق اور فرائض سکھائے گئے کہ جب تک مسلمان گھروں میں ان چیزوں کو سامنے رکھا جاتا تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی طلاقیں نہیں ہوتی تھی، کبھی بھی وہ غلط حالات نہیں تھے جس کی کیفیت آج دکھتی ہے. اگر آج میں اور آپ امت مسلمہ امت وسط بننا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنے گھروں کے نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جس ملک میں آپ رہیں اینڈ آف دا ایئر خبر پھیل جائے کہ پورے سال میں جتنے ڈائیورس کیسز فائل ہوئے اس میں ایک بھی مسلمس کا نہیں تھا، ایک خاموش تبلیغ ہوگی. میں اور آپ اسلام کا نام صرف قرآن پڑھ کر نہیں بیان کریں گے، ہم اپنے رویوں سے دیکھیں گے. وہ کہ کیا بات ہے ان کے گھروں میں لڑائیاں نہیں ہوتی، دے آر دا ہیپی کپل، دے آر دا سویٹ برڈز اور دے آر دا فلاں برڈز، یہ کون سے، آؤ ہم ان سے سیکھیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے احکامات کو مانیں گے. اللہ نے مرد کو ایک اپر ہینڈ دیا، نکاح کی صورت میں چونکہ اس نے زیادہ خرچ کیا تھا تو طلاق کی صورت میں اپر ہینڈ کہ مرد طلاق دے سکتا ہے. عورت طلاق دے نہیں سکتی لیکن مانگ سکتی، اتنا سا فرق ہے. دیٹس اٹ. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے نکاح کے وقت میں ایجاب و قبول مرد کی طرف سے آئی تھی آفر اور عورت نے اس کو قبول کیا تھا. تو لہٰذا اس سسٹم کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہمارا ایک لیکچر بھی ہے، نکاح سے طلاق تک سٹیپ بائی سٹیپ، بہت خوبصورت طریقے سے ہم نے ایک پریزنٹیشن کے ذریعے دیکھا تھا کہ ایک شادی شدہ جوڑے کو یہ مسائل کتنے ضروری ہیں پتہ ہونے. اور آج مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ سوالوں کے جواب پڑھ کے جو لوگوں نے اخباروں میں پوچھے ہوتے ہیں، اور اکثر سوالوں کے جواب میں ایک ہی جواب ہوتا ہے، نہیں سوری آپ کی طلاق ہو گئی اور اب یہ گھر نہیں جڑ سکتا، نہیں اب کوئی صورت نہیں سوائے حلالہ کے. حالانکہ آئیے دیکھیے اللہ کیسے طلاق دلوا رہے ہیں. الطلاق مرتان، طلاق تو 2 بار ہے. پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. दो भर से क्या मुराद है? दो महीने। औरत को तलाक देनी होगी तो मर्द को इंतजार करना पड़ेगा, एक पीरियड से दूसरे पीरियड्स के दौरान एक दफा तलाक देगा, फिर वो औरत उसके साथ रहेगी, उसके घर में रहेगी, कोई उसको मुतलका नहीं कह सकता। अगर एनी टाइम मर्द अपनी तरफ से रजू करना चाहे उसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, औरत रिफ्यूज नहीं कर सकती, उसके माँ बाप इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो दोबारा हस्बैंड वाइफ बन के रहेंगे। फर्क बस इतना होगा कि जिंदगी में कभी दोबारा गुस्से में आके उसने फिर तलाक दी, ये पहली भी जिंदा होके दो हो जाएंगी, एक नहीं होगी। फिर दूसरे महीने मर्द खामोश रहे तो बेहतर है, नहीं उसको बोलना, चुप रहे। तीसरा माह जब खत्म होगा ऑटोमेटिकली तलाक हो जाएगी। जब वो इसके बाद औरत घर से वापस जाती है तो फिर उसके पास फिर भी ऑप्शन मौजूद होती है कि जब कभी उन दोनों को फील हो कि नहीं हम ठीक ही थे, वैसे ही वक्ती असर था, वो दोबारा निकाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सख्त किस्म की तलाक चाहते हैं तो पहला महीना मर्द तलाक दे, औरत घर में रहेगी, फिर औरत दूसरी दफा जब पाक होगी फिर तलाक देगा, फिर वो मर्द साथ रहेगी, फिर तीसरी दफा तलाक देगा, फिर औरत जुदा होगी। इस तरह करेंगे तो फिर वो शर्त है जिसको हमारे यहाँ फी जमाना हलाला का नाम देते हैं, जिसको अल्लाह के नबी ने कहा कि ये किराए का सांड है। देखिए ये हलाल और हराम के मसले हैं। चलिए हर मसला हर एक को पेश नहीं आता, लेकिन शादीशुदा लोगों का तो ये मसला मौजूद है, इसलिए फर्ज बनता है सिस्टर्स पे और ब्रदर्स पे कि जो शादीशुदा जिंदगी बसर कर रहे हैं वो इन मसाइल को समझें। और मैं सोचती हूँ कि शादी करने से पहले ये सारे मसाइल एक कोर्स की सूरत में बच्चे बच्चियों को सिखाने चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि आप एक मैदान में कूद रहे हैं और आपको उसकी पाबंदियां नहीं पता? और ये बात क्यों अहम है? क्योंकि हलाल और हराम का फर्क है। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो हराम तरीकों से रह रहे हैं, तलाकें हो चुकी हैं, उनको पता ही नहीं, और कई ऐसे हैं कि घर बच सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, आज भी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन वो चूके कुरान नहीं पढ़ चुके तो वो समझते हैं कि हमारी तलाक हो चुकी है और अब हमारे पास रुजू का कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि छोड़ना भी कैसे है, ऐसे नहीं छोड़ना के बातों के तोहफे दो, बल्कि वला यहिल्लु लकुम अंता खुजु मिम्मा आतैतुमुहुन्ना, और रुख्सत करते वक्त तुम्हें ऐसा करना जायज नहीं कि जो कुछ तुम इन्हें दे चुके हो इसमें से कुछ वापस ले लो। देखिए अल्लाह ने ये मैनर भी सिखा दिया कि तलाक हो, घर टूटे तो फिर उसकी सारी चीजें वापस लेने देने के मामले ना करो कि वो अम्मा ने जो बालियां दी थी वो किधर और बहन ने जो अंगूठी दी थी किधर है। इस्लाम तो ऐसी बातें नहीं सिखाता। हमारे तो निकाह तो छोड़िए, मंगनी टूट जाए तो चीजें वापस आती हैं। हदीस में आता है कि जिसने तोहफा देकर वापस ले लिया उसने कुत्ते की कह को करके चाटने वाली मिसाल ली। तो ये सब चीजें हमें सीखने की हैं। अलबत्ता ये सूरत इससे एग्जेम्प्ट है, यानी मुस्तस्ना है कि ज़ौजैन को यानी शोहर और बीवी को अल्लाह की हदूद पर कायम ना रह सकने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें खौफ हो कि वो दोनों अल्लाह की हदों पर कायम ना रहेंगे तो इन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में कोई हर्ज नहीं कि औरत अपने शोहर को कुछ मुआवजा देकर अलहदगी हासिल कर ले। यह औरत की तरफ से तलाक जिसको खुला कहते हैं। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद है, इनसे तजावुज ना करो, और जो लोग अल्लाह की हदों से तजावुज करेंगे वही जालिम है। इसको नोट करें आप, तलाक और निकाह का मामला जो सरासर ह्यूमन मैटर है, हकूकुल इबाद है, बार बार अल्लाह ताला कह रहे हैं तिल का हुदूदुल्लाह, तिल का हुदूदुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह की फिक्र करो। क्यों? कि इंसानी मामलात में इंसाफ हो ही नहीं सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। फिर अगर वो दोबारा तलाक देने के बाद फिर अगर दो बार तलाक देने के बाद शौहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी, फिर वो औरत उसके लिए हलाल ना होगी, अल्लाह ये किसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो इसे तलाक दे दे, तब अगर पहला शौहर और ये औरत ख्याल करे कि हदूद इलाही पर कायम रहेंगे तो इनके लिए एक दूसरे की तरफ रजू कर लो, उसे लिखिए दोबारा निकाह कर लेने में कोई मजायका नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं जिन्हें वो इन लोगों की हिदायत के लिए वाजे कर रहा है जिसकी हदों को तोड़ने का इंजाम जानते हैं। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और इनकी इद्दत पूरी हो जाने को आ जाए तो या भले तरीके से इन्हें रोक लो या भले तरीके से रुख्सत कर दो, महज सताने की खातिर ना रोके रखना ये ज्यादती होगी। बस कहते हैं ना रखेंगे ना छोड़ेंगे, ना बेवा होगी ना बीवी होगी। फरमाए मैं यह फल जाली का फकत जलम नफसा, जो ऐसा करेगा वो दर हकीकत अपने ही ऊपर जुल्म करेगा। अल्लाह ताला की आयतों का खेल ना बनाओ। आज खेल बन गया, एक रात के लिए शादी करवाते हैं किसी दूसरी जगह और फिर अगले दिन औरत को तलाक दिलवाते हैं और फिर 3 माह की इद्दत वो गरीब काटती है, फिर पहले मर्द से उसको ब्याह देते हैं। किस पे जुल्म हुआ, मर्द पे कि औरत पे? औरत पे हुआ। जितना तलाक में नुकसान औरत का होता उतना मर्द का नहीं होता। और उसके जज्बात आप देखिए, एक औरत दुल्हन बन रही और उसको पता है कि मुझे अभी तलाक होनी है, शादी हो रही है और उसको पता है अभी मैंने फिर मुतलका का जोड़ा पहनना है, कितना औरत के जज्बात के साथ ये मजाक है, औरत है कि शोबीस है। अल्लाह ताला ऐसी तमाम लगवियात से हम सबको बचाए। भूल ना जाओ कि अल्लाह ने किस नेमत उस्मा से तुम्हें सरफराज किया। मैं नहीं बोलूंगी, मैं आपसे सुनना चाहूंगी یہاں نعمت عظمیٰ سے کیا مراد ہے؟ اسلام، امت وسط ہونا. تم دنیا میں یہ گھر گھر بنانے نہیں آئے تھے کہ ایک شادی کرو چھوڑو پھر اس کو توڑو پھر اس کو کرو، ہو گئی ختم کرو، بس اسی پہ صبر کرو، پہلے سوچ سمجھ کے کرو. حلال جگہ ہے، اللہ نے ایک جوڑ ملا دیا، اب تمہاری پسند ناپسند، تمہارا مزاج نہیں ملتا. آج مسلمان لوگ صرف اور صرف اگر امت وسط کا کردار ادا کرنے لگ جائیں، یقین کریں گھروں میں سکون آ جائے. کسی کی بات میں اکثر سناتی ہوں کہ ایک مبلغ تھے تو وہ اپنے کسی دوست سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی میری بیٹی پریشان ہے، اس کی بات نہیں چل رہی، صحیح نہیں بن رہی، تو بتاؤ کیا کروں. پوچھا کیا وجہ ہے بیٹی اور داماد کا کیا مسئلہ ہے؟ کچھ باتیں پوچھتے رہے، کیا کیسے دین میں کیسے کا، ٹھیک ہے. آخر میں جو کہانی کھلی وہ یہ تھی کہ مزاج نہیں ملتے. تو اس نے کہا کہ میرے بھائی میں ایک بات تمہیں کہوں، اگر مزاج کی بات ہے نا تم کو خود نپٹے، چپ کر کے بیٹھو، تم اپنا کام کرو اور انہیں بولو کہ مزاج ٹھیک کر لو. دین کی بات ہوتی، حرام حلال ہے وہ اور بات تھی. اگر تم اس وقت ایک بیٹی کا باپ بن کے جینا چاہتے ہو تو جاؤ پھر اس بیٹی کا پہلے معاملہ لو، پھر عدالت میں لے جاؤ، پھر طلاق دلاؤ، پھر اس کو گھر میں لاؤ، پھر اس کا نیا رشتہ ڈھونڈو، پھر نئی جگہ شادی کرو. تم یہ کرو گے سوچو تمہاری تبلیغی اور دینی سرگرمیاں کتنی متاثر ہوں گی، نئے سرے سے ایک پھر کام ہوگا. اور رہ گئی بات کہ اگر تم ایک امت مسلمہ کے فرد کی سے سوچو تو بیٹی کو کہہ دو کہ بیٹا اسی گھر میں رہو، تم اپنے آپ کو بزی کر لو. اور میں سب کو کہوں گی جس کی اپنے شوہر سے نہیں بنتی، یا وہ بھائی جن کی بیویاں ان کی ہم مزاج نہیں، اس کا سب سے آسان اور مجرب نسخہ اس وقت ہے کہ خود کو بھی بزی کر لیں، ان کو بھی بزی کر لیں. خالی ذہن ڈیول کی ورک شاپ ہوتی ہے. اور اسی طرح سے پھر بہت ساری ایکسپیکٹیشن جب ہم ایک دوسرے سے لگا لیتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ پوری نہ ہو پائیں تو ہم اپنے آپ کو اس سے دور کر دیتے ہیں. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام الحس رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. چرب زبانی سے ہم سچے ثابت کر سکتے ہیں خود کو، لیکن اللہ کو پتہ ہے کون سچا کون جھوٹا. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ بنو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح کرنے پر راضی ہوں. یہ ہے وہ نکاح جس کو طلاق حسنہ کے بعد کا نکاح کہتے ہیں. ابھی میں نے جان کے یہ جملہ بولا، حالانکہ طلاق کے ایشوز اتنی جلدی سمجھ نہیں آتے. میں آپ سب سے بھی کہوں گی کہ اس بات کو بس اپنے ذہن سے نکال کے خالی کریں، جس نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہوگا وہ بعد میں سنیں. لیکن یہ جملہ میں نے جان کے بولا. پچھلے سالوں کے دورے قرآن میں سے ایک فیڈ بیک آیا تھا ہمارے پاس، کسی نے دورے قرآن کیا اور اس کے بعد ان کو یہ جملہ یاد تھا صرف کہ طلاق حسنہ یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ مرد عورت دوبارہ شادی کر سکتے ہیں. اس کی بیس پہ وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے ہمارے پاس آئے، پھر کاؤنسلنگ ہوئی، کئی سال کا گھر ٹوٹا ہوا جب دیکھا تو بالکل یہی حالات ہے. اور وہ لڑکا لڑکی اور جو بھی ہسبینڈ وائف تھے وہ دوبارہ ساتھ رہنا چاہتے تھے، ان کا نکاح ہو گیا. تو انہوں نے اس وقت یہ کمنٹ دیا تھا کہ یہ چھوٹا سا دورے قرآن کا سفر ہماری ٹوٹے ہوئے گھر کو جوڑنے کا ذریعہ بنا. تو یہ اس لیے میں تھوڑے سے جملے بول دیتی ہوں کہ ہنٹ مل جائے. آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے ڈیٹیل سے قرآن پڑھنا ہے رمضان کے بعد، تو پھر تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی کچھ مل جائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ مسائل عام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے تمہیں نصیحت کی جاتی کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا. اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو، تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جب آپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے. اب آپ دیکھیے بعض اوقات طلاق ہوتی ہے تو بچے بھی ہوتے ہیں. اب یہاں دودھ پینے کی بات ویسے تو عام حالات میں ماؤں کو ان کی ذمہ داری یاد دلائی گئی کہ تم اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاؤ جانوروں کا دودھ پلانے کی بجائے. لیکن بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اس سے پہلے طلاق ہو چکی ہے. تو یہاں اس جوڑے کی بات ہے کہ جس کو ڈائیورس ہوئی یا لی، لیکن اس صورت میں بچہ بھی موجود تھا، تو وہ عورت اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے گی. لیکن وہ شوہر جب اس کا شوہر نہیں رہا لیکن اس کے بچے کا باپ تو ہے، تو وہ اس کے کھانے پینے کا سارا انتظام کرے گا. فرمایا مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. کتنی بڑی ذمہ داری تھی. جب ماں نیک ہوتی ہے، جب ماں کے دل میں نبی کی محبت اور اللہ کی محبت ہوتی ہے، پھر وہ 2 سال تک اپنے بچے کو جب دودھ پلاتی ہے، اپنی گود میں اس طرح پیار سے رکھتی ہے، تو آپ دیکھیے اس بچے کی آدھی تربیت تو وہیں ہو جاتی ہے. آج کہتے ہیں جراثیم موو ہوتے ہیں، آج کہتے ہیں کہ بیکٹیریا ادھر سے ادھر چلتے ہیں. یاد رکھیے تقوی اور اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف بھی ماؤں کو بچوں سے اسی طرح سے انفیوز ہو جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں اس ذمہ داری کو سمجھیں. لیکن جب ماں ویران ہے، جب ماں قرآن نہیں پڑھی بھی، جب ماں کو اللہ سے پیار کم ہے، اللہ کے رسول سے بس ایک ظاہری قسم کا پیار ہے، تو پھر وہ 2 سال چھوڑ کے 10 سال بھی پلا دیں گی وہ فائدہ نہیں ہوگا. فرمائے اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کپڑا کھانا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسط سے بھر کر بوجھ نہ ڈالنا چاہیے. ना तो माँ को इस वजह से तकलीफ में डाला जाए कि बच्चा इसका है और ना ही बाप को इस वजह से तंग किया जाए कि बच्चा इसका है। दूध पिलाने वाली का ये हक जैसा बच्चे के बाप पर है वैसा ही इसके वारिस पर भी है। लेकिन अगर बाहमी रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, और अगर तुम्हारा ख्याल अपनी औलाद को किसी गैर औरत से दूध पिलवाने का हो तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि इसका जो कुछ मुआवजा तय करो वो मारूफ तरीके से अदा करो। अल्लाह से डरो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो सब अल्लाह की नजर में। यहाँ क्या पता चला कि अगर मजबूरी के हालात में माँ का दूध बच्चे को नहीं मिल रहा, कोई भी वजह हो सकती है, किसी और औरत का पिला लें। जानवर का दूध एक बिल्कुल लीस्ट चॉइस रह सकती है। अरब लोगों का ये आम कल्चर था। आप खुद जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ के अलावा दो और औरतों का भी दूध पिया, और आपके अंदर ये सारी खूबियां क्यों आई कि मुख्तलिफ औरतों की फिर ताकत और उनका ईमान और तकवा आता है। इस कल्चर को भी आम करने की जरूरत है कि अगर आप अपने बच्चे को खुद नहीं दूध पिला सकती, अपने खानदान फैमिली में देखिए, अपने घर में ही हो सकते हैं, बाज़ दफा देवरानी और जेठानियों के बच्चे साथ साथ होते हैं, किसी और औरत का दूध पिलाए, क्योंकि इंसान को इंसान का दूध ज्यादा रास आता है। अब यहां से इद्दत की बात है, बेवकी की इद्दत। तुम में से जो लोग मर जाए इनके पीछे, अगर इनकी बीवियां जिंदा हों तो वो अपने आप को 4 महीने 10 दिन तक रोके रखें, फिर जब इनकी इद्दत पूरी हो जाए तो फिर उसके बाद क्या करें। फला जुनाह अलैकुम फीमा फअल नफी अनफुसिहिन, फिर इनको इख्तियार है अपनी जात के मामले में मारूफ तरीके से जो चाहें करें, तुम पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, अल्लाह तुम सब के अमाल से बाखबर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि अली तीन बातों में देर ना करना, फर्ज नमाज जब उसका वक्त हो जाए तो उसकी अदायगी में, इसी तरह से जब कोई मर्द या औरत तन्हा रह जाए, यानी बेवा हो गई औरत या मर्द अकेला रह गया या डिवोर्स हो गई तो उसके निकाह सानी में, और इसी तरह से जब कोई मर जाए तो उसको दफन करने में, वरना फितना होगा। आज हमारे कल्चर में क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं कि निकाह कर दो इनके दोबारा, इनको आजादी है, हमारा कल्चर नहीं करने देता। 4 माह 10 दिन की हद है, 4 माह 11वें दिन एक औरत की शादी दोबारा हो सकती है बेवकी के बाद। आज अल्लाह रहम करे कोई ऐसा करे तो कहेगा पहले से सोचा हुआ था और न जाने खुद ही नहीं मरवा दिया। तो ये भी आज उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा आलमी है कि हम अपने तरीकों से ज्यादा, अपने हमसाया मुल्कों के तरीकों से ज्यादा मुतासिर होते हैं और दूसरों का असर हम पे आ गया। तुम पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, अल्लाह तुम सब के अमाल से बाखबर है। जमाने इद्दत में ख्वाह तुम इन बेवा औरतों के साथ मंगनी का इरादा इशारे कनाए में जाहिर कर दो, ख्वाह दिल में छुपाए रखो, दोनों सूरतों में कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ताला जानता है कि इनका ख्याल तो तुम्हारे दिल में आएगा ही, मगर देखो खुफिया तो पैमान न करना। अगर कोई बात करनी है तो मारूफ तरीके से करो, और अकदे निकाह बांधने का फैसला इस वक्त तक न करो जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए। खूब समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल जानता है। फहज़रूहु, बस तुम उससे डरो, और ये भी जान लो कि अल्लाह बुर्दबार है, छोटी छोटी बातों से दरगुजर फरमाता है। इस्लाम में नस्ब की कितनी अहमियत है यहाँ से पता चलता है। औरत की इद्दत को मुख्तलिफ हालात में जो मुख्तलिफ रखा गया, इसमें बहुत सारी हिकमतों में एक हिकमत यह है कि ये पता चल जाए कि औरत के पेट में पहले शौहर से कोई बच्चा नहीं है। इसको अरबी में इस्तबराए रहम कहते हैं। आप देखिए कि किसी और का बच्चा हो और शादी कहीं और हो जाए तो उस बच्चे का नसब नहीं पता, तो उसको रखिए एक तरफ, और कहाँ वो मुआशरा के जहाँ 50% से ज्यादा बच्चों को अपने बाप का भी नहीं पता। ये भी एक कल्चरली कह लीजिए कि चीज़ है जिसने आज बुनियादें हिला के रख दी आज के माशरों की, कि उधर पैदा होने वाले बच्चों को अपने बापों के नाम तक नहीं पता। आज फॉर्म्स में से अगर बाप का नाम निकालना पड़ा तो उसकी वजह क्या है कि इस माँ को शर्मिंदा ना करो, उसको तो बेचारी को खुद नहीं पता किसकी वजह से हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस्लाम ने कितनी सख्त पाबंदियां लगाई हैं। इस्लाम जो जिना को पसंद नहीं करता उसकी भी यही वजह है कि किसी का बच्चा किसी दूसरे के नाम पर ना लग जाए।